आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है और हम आपकी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की अध्याय 7 राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, परंतु हमेशा की तरह पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या जाना है राष्ट्रवाद के बारे में। तो जो राष्ट्रवाद है उसकी आम समझ से हमने जाना कि अगर हम जनता के माध्यम से समझें तो ये देशभक्ति है, राष्ट्र ध्वज है, देश के लिए बलिदान, ये सारी बातें हमें राष्ट्रवाद की तरफ ले जाती है। जो राष्ट्रवाद है अभी तक उसकी कोई ऐसी खास डेफिनेशन हमें देखने को नहीं मिली, और हमने ये जरूर जाना कि जो राष्ट्रवाद है वो एक देश को अपने निर्णय लेने का अधिकार देता है, संप्रभु सरकार के बारे में बात करता है, और जहां लोगों को उनके अधिकार मिले वह एक राष्ट्र है। राष्ट्रवाद हमने ये भी देखा कि कई चरणों से गुजर चुका है और इसने कई क्रांतियों को भी जन्म दिया, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, अमेरिकन क्रांति हो, सारी क्रांतियों के जड़ राष्ट्रवाद रहा है। उसके बाद हमने ये जाना कि जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसे राष्ट्र या राष्ट्रों का निर्माण करना चाहता है जो किसी भाषा, धर्म या जातिता पर ना आधारित हो, ये राजनीतिक मूल्यों पर आधारित हो, और राष्ट्र को बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय माना गया जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास और आकांक्षाओं के सूत्र से बंधा होता है। उसके बाद हमने ये माना और जाना भी कि राष्ट्र के लिए कुछ मान्यताएं जरूरी हैं, उसकी पहचान की कुछ तत्व हैं, और तीन तत्वों को हमने अभी तक पढ़ा, उसमें से एक है साझा विश्वास, इतिहास और भूक्षेत्र। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नए तत्वों को, नई मान्यताओं को समझेंगे जो राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप हमेशा की तरह अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और पेज नंबर 99 पर आ जाएं, जहां पर हम पहला सब टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है साझे राजनीतिक आदर्श। मैं इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। चौथा, हालांकि अपना भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपने स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत की वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्य की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरीके का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में यही वे शर्तें हैं जिनके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। तो देखिए, अब भी पहले हमने तीन तत्वों को पढ़ा था, अब हम चौथी बात कर रहे हैं जो जरूरी है एक राष्ट्र के लिए, वो है राजनीतिक आदर्श। जो भूक्षेत्र है, इतिहास है, सब अतीत की बात है, ठीक है, वो हुआ है देश के संग, पर एक देश बनाने के लिए हमें हमारे फ्यूचर यानी भविष्य के नजरियों को क्लियर करना पड़ता है। तो एक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी समूह हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक साझा दृष्टि हो कि वो किस तरीके का राज्य बनाना चाहते हैं। और ये जो राष्ट्र होगा वो तभी एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है जब उसमें लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, इस तरीके के मूल्य हो, और ये जो मूल्य है सभी उसका सम्मान करें और इन मूल्यों के आधार पर सब साथ रहना चाहें। तो ये जो विचार है कि एक राजनीतिक पहचान चाहिए, राजनीतिक आदर्श चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। मैं इसका अगला पैरा पढ़ रही हूँ आपके लिए। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्रीय नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। अब ये पैरा हमें बता रहा है कि अगर एक राष्ट्र बनाना है तो कुछ अधिकार तो आपको डेफिनेटली मिलते हैं, पर आपके कुछ दायित्व भी होते हैं। हम सभी सदस्य जो समुदाय के हैं, उस राष्ट्र के हैं, कुछ दायित्वों से बंधे हुए हैं। अगर अधिकार चाहिए तो दायित्व निभाने पड़ेंगे। साथ में हमें जो हमारे आसपास के जो हमारे सह नागरिक हैं, साथ के लोग हैं, हमें उनके लिए भी अपनी प्रति जिम्मेदारी हमको निभानी पड़ेगी। ये राष्ट्र तभी मौजूद जो अभी है जिस फॉर्म में, उसको मजबूती तभी मिलेगी जब सभी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे। तो मतलब कि जो जिम्मेदारी शब्द है उसका मतलब यही है कि हम अपने अधिकारों की तो रक्षा करें, साथ ही दूसरों को भी उनके अधिकारों की फ्रीडम दें और उसकी भी रक्षा करें। तो वही देश सफल हो सकता है जहां पर जिम्मेदारियां सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति निभाएं, और ये जो जिम्मेदारी निभाने का तरीका है वही आपके राष्ट्र के प्रति वफादारी को समझाता है। अब मैं अगला पैरा पढ़ना शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम पांचवी बात समझेंगे, वो है साझी राजनीतिक पहचान। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान पर वे एक समान भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपसे समाज को काफी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर भी बहुत सारे विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार मनाना, एक जैसे मौकों पर छुट्टियां चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही यह उन मूल्यों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। अब ये पैराग्राफ से मतलब ये है कि जब हमने आदर्श पढ़ लिए, अब हमें एक राजनीतिक पहचान की भी जरूरत है। एक देश को बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग मिलकर रहें। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि नहीं, भाषा के आधार पर देश होना चाहिए, जाति के आधार पर देश होना चाहिए, धर्म के आधार पर देश होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि हमारा एक ही त्योहार होगा तो हम एक साथ मिलकर मनाएंगे, एक ही संस्कृति होगी तो हम ज्यादा अच्छे से रह सकेंगे। पर इस तरीके की जो मूल्य है, जो धर्म जाति संस्कृति पे आधारित है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर अधिकार देता है। अगर हम जाति धर्म के नाम पर राष्ट्र को बनाने लगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। और अब ये कैसे खतरा होगा, इसको हम अगले पेज, जिस पर अब हमारे पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 पर जानेंगे। मैं पहला पैरा इस पेज का पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भी भरे हुए हैं, अपने समुदाय के अंदर चलने वाले स्वभाव के कारण ही बने और बड़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों नियमों की उनकी व्याख्याएं काफी अलग अलग होती हैं। हम इन विविधताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही बच्चत्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे। देखिये, पहला कारण यह कि अगर हम कहें कि धर्म के आधार पर देश बनाएं, तो आपको लगता है कि धर्म सिर्फ एक धर्म है, उसमें उसके अंतर्गत कोई पार्ट नहीं है। आप कोई भी धर्म उठाएं, सभी धर्म के अंदर छोटे छोटे डिविजन बने हैं, पंथ बने हुए हैं। आप हिंदू समाज देखिए, 34 कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई कहता है हमारे संस्कार अलग हैं, कोई राम की पूजा करता है, कोई किसी भी, अलग अलग सबके भगवान हैं, अलग अलग सबकी संस्कृतियां। हिंदू धर्म में भी हम इस्लाम पर आते हैं, शिया और सुन्नी अलग अलग पंथ हैं। आप जैन धर्म देखिए, उसके अलग अलग हैं। आप बुद्ध धर्म देखिए, उसके अलग अलग पंथ हैं। कोई भी आप धर्म उठाइए, सब एक नहीं है, उनके अंदर भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग विचार हैं। तो आप कैसे उसको धर्म के आधार पर बांध सकते हैं? ठीक है, आप बांध भी लें, सब ये विभिन्नताओं को हटा दें और आप कहें कि नहीं, हम धर्म के आधार पर बनाएंगे राष्ट्र। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों के विचारों का दमन कर रहे हैं, आप लोगों के विचारों का गला घोट रहे हैं और ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। अब हम अगला पैरा पढ़ेंगे। दूसरा कारण यह है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। इसमें शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह की हानि होगी। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव सबके लिए स्वतंत्रता के उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक पदों से। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। अब ये पैराग्राफ हमें दूसरा कारण बताता है कि हम क्यों धर्म या संस्कृति के आधार पर देश नहीं बना सकते। देखिए, कोई भी आप देश देखिए, कोई क्षेत्र देखिए, आप अपना ही राज्य देख लीजिए। उदाहरण के लिए, हर थोड़े थोड़े दूर पे कुछ अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, और ये हर जगह दुनिया में हर जगह ही हो रहा है, चाहे भारत हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब जगह छोटे छोटे धर्म है, छोटी छोटी भाषा है, सब लोग एक क्षेत्र में मिलकर तो रहते हैं। अब आप ये कहें कि हम किसी धर्म के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर देश बनाएंगे, तो डेफिनेटली इससे कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समूह होगा, क्योंकि आप उनको नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग है, उनकी राष्ट्रीय भाषा अलग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप धर्म या भाषा के आधार पर देश बनाने लगेंगे तो आप सबके संग समान बर्ताव नहीं करेंगे, सबको स्वतंत्रता नहीं देंगे। किसी भी देश को बनाने के लिए लोकतंत्र के मूल्य सबसे जरूरी हैं। स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, समान बर्ताव जरूरी है। अगर आप इन मूल्यों की रक्षा नहीं करेंगे, राष्ट्र बना देंगे, तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। आप लोकतंत्रात्मक देश नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब है आप अमूल्यों को फिर वैल्यू देने लगेंगे। तो जरूरी है कि हम भाषा संस्कृति को छोड़कर राजनीति के सिद्धांत के आधार पर देश बनाएं। राजनीति के सिद्धांत क्या होंगे, जैसे लोकतंत्र है, धर्म निरपेक्षता है, समानता है, स्वतंत्रता है, ये सभी मनुष्यों पर लागू हो। हम सांस्कृतिक आधार पर देश ना बनाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम मूल्यों को वैल्यू दें, ऐसे मूल्य जिनको हम संविधान में भी लिख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ हमें इस बात की ओर ले जा रहा है कि संवैधानिक देश बनाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों की ज्यादा आवश्यकता है। मैं अगला पैरा पढ़ रही हूँ। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिसके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने यह भी देखा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं, विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या है। आगे के दो खंडों में हम इन प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब हमने चार पांच बातें देख ली कि राष्ट्र के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे जरूरी यही है कि सबके सामूहिक पहचान हो, बराबरी हो। पर अब ये प्रश्न जो है वो ये है कि लोग चाहते ही क्यों कि राष्ट्र बने, और इस राष्ट्र की आकांक्षा क्या है। अब इन दो प्रश्नों पर हमारी निगाह रहेगी। तो चलिए अब हम इनके उत्तर खोजते हैं। हम अगला सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 7.3, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपने शासन, अपने आप करने और भविष्य को तय करने के अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में वे राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है, जिसके प्रत्येक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हों, जिनमें साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय लेने के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि राष्ट्र क्यों चाहिए। सबसे बड़ा कारण जो राष्ट्र चाहिए, अपना शासन चाहिए, वो आत्मनिर्णय के लिए, मतलब हम अपने देश का डिसीजन खुद लें। कई राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी कहते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए, हमारी अपनी संस्कृति, हमको अपना निर्णय खुद लेना है। अगर इस तरीके से होने लगा, मान्यता दी जाने लगी, तो ये बहुत ही एक मुश्किल कार्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से एक ही भूभाग पर बहुत सालों से साथ रह रहे हैं, उनकी पहचान भी है। अब ये जो लोग हैं, ये अपना आत्मनिर्णय करना चाहते हैं, खुद को स्वतंत्र महसूस कराना चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं। तो ये इनका बेसिक थॉट ये है कि हम संस्कृति के आधार पर अलग होना चाहते हैं। हमारी संस्कृति अलग है, तो अब हम इन विचारों को देखेंगे कि क्या संस्कृति के आधार पर हम अलग हो सकते हैं। हम पेज नंबर 101 पे हैं, एक बॉक्स बना है, मैं इसको हमें डिटेल में नहीं जाना है, इसको सिर्फ आपके एक जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये बॉक्स है। मैं इसके अंदर का जो थोड़ी सी जो समरी है वो बता देती हूँ। ये जो बॉक्स है ये हमें एक समुदाय है, बास्क समुदाय भी है, एरिया भी है, स्पेन में है, ये स्पेन जो कंट्री है। इन लोगों का कहना है कि हम स्पेन से अलग हैं क्योंकि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, परंतु स्पेन ने इनको स्वायत्तता दे रखी है, लाइक ये अपने को डिसीजन खुद ले सकते हैं। परंतु ये जो बास्क के समर्थक हैं उनका कहना है कि हमें अपना एक अलग राष्ट्र बनाना है, और ये बहुत हिंसक भी हो गए। ये आंदोलनकारी जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी अलग न्यायिक योजना होनी चाहिए, हमारी अपनी प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए जिसके हम अंतर्गत हम खुद अपना देश अलग बनाएं और उस पर कार्य करें। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इससे काफी स्पेन को नुकसान भी पहुंचा, और अभी भी ये मुद्दा राजनीति के तौर पे गरमाया हुआ है कि क्या किया जाए बास्क का, क्योंकि बास्क के लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति अलग है, हमें अलग कर दीजिए, और स्पेन का कहना है कि नहीं, आप इस देश की पार्ट हैं, आपको हमको थोड़े और अधिकार दे रहे हैं, स्वायत्तता दे रहे हैं, आप इसी देश में रहिए। तो ये बड़ा ही जटिल प्रश्न हो जाता है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे कि क्या संस्कृति के आधार पर हम देश को विभाजित कर सकते हैं। के लिए हमें पेज नंबर 102 पर चलना पड़ेगा। मैं पहला पैरा इसका पढ़ना शुरू कर रही हूं। दूसरी तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के रूप में सामने आए, उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा, परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया। वर्साई की संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमा में बदलाव हुए, इससे सीमाओं में एक दूसरी और बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था, बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार बने। अब यहाँ पर यही बात हो रही है, जो बास्क का मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो अपनी संस्कृति के आधार पर अलग होना चाहते हैं, तो ये जो सोच है वो कहाँ से आई? ये संस्कृति के आधार पर एक संस्कृति एक राज्य की बात हुई, ये शुरुआत हुई यूरोप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो जर्मनी है उसकी हार हुई थी, और उस समय वहां पे वर्साई की संधि हुई, वर्साई की जिसको अंग्रेजी में वर्सलिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कहते हैं। जर्मनी के जितने भी औपनिवेशिक थे उनको आजाद कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को बांट लिया गया। ये तो खैर वो हिस्ट्री पार्ट की बात हो जाती है जहां पर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। हम बात करें कि इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ। तो क्या हुआ कि जितने भी संधि के तहत राष्ट्र थे उन सब का गठन होने लगा, छोटे छोटे राज्यों का, और इनका गठन संस्कृति के आधार पर हुआ। मतलब हमारी जो संस्कृति, इसमें कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं, संस्कृति हमारे जो कल्चर है। तो ये जो यूरोप है, जैसे भारत है, यहाँ पे कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। वैसे जब यूरोप को हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि यूरोप में सारी कंट्रीज एक जैसी हैं, एक जैसी नहीं है। फ्रांस की अलग संस्कृति है, फ्रांस में भी 10 ग्रुप है, उनकी अलग कंट्री है। उसके बाद आप इंग्लैंड की बात कीजिए, वहां पर स्कॉटलैंड की अपनी संस्कृति है, आयरलैंड की अपनी संस्कृति है, जर्मनी की अपनी संस्कृति है। तो यहाँ पर ये डिमांड हुई कि हम अपनी संस्कृति के आधार पर अपना राष्ट्र का निर्माण करें। अब जब ये बात हुई तो सीमाओं में भी बदलाव हुआ, क्योंकि संस्कृति के लोग इधर उधर बिखरे हुए थे हर संस्कृति के, तो सीमाएं तय गई कि इस ग्रुप के लोग यहाँ रहेंगे, इसके ग्रुप यहाँ रहेंगे। तो जब सीमाओं का बदलाव हुआ तो लोगों का माइग्रेशन हुआ, लोगों को इधर से उधर धकेला गया कि आपका ये राष्ट्र नहीं, आप किसी और संस्कृति को बिलोंग करते हैं, आप वहां जाएंगे। इससे क्या हुआ, बहुत सारे घर उजड़ गए, विस्थापितों को कोई जगह नहीं मिली। हर देश कुछ लोगों जो अल्पसंख्यक थे उनको तो धकेल रहा था कि आप हमारे राष्ट्र के नहीं, आप हमारा राष्ट्र छोड़िए, और इससे बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। मैं अगला पैरा पढ़ रही हूँ। अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और इससे नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूह को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई, जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। अब क्या हुआ कि राष्ट्र तो बन गए, है ना। अब ये पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि इसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी। कैसे? क्योंकि जो नए राष्ट्र बने उन्होंने कहा कि हम एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, एक ही संस्कृति के लोग रहेंगे, पर ऐसा करना इम्पॉसिबल था क्योंकि पहले से ही एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी संस्कृति भाषा के लोग रह रहे थे। अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो अल्पसंख्यक थे, उनको कोई देश नहीं मिला, उनकी स्थिति बहुत नुकसानदेह हो गई। सिर्फ एक सकारात्मक पहलू राष्ट्रवादी लोगों के लिए ये था कि वो जो राजनीतिक मान्यता चाहते थे उनको मिल गए, उनका अपना देश बन गया, वो स्वतंत्र हो गए। परंतु अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति खराब होती चली गई, उन्हें कोई देश नहीं मिला। हम अगला पैरा पढ़ रहे हैं। जब एशिया एवं अफ्रीका अपने वैश्विक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ भी सांस्कृतिक समूह, जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे, के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तथा राज्यसत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के कारण देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्ष की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूह का विरोध कर रहे हैं। अभी पैराग्राफ हमें एशिया अफ्रीका के बारे में बता रहा है। देखिए, पहले हमने यूरोप में जाना कि उन्होंने कहा संस्कृति के आधार पर अलग होंगे, लेकिन एशिया और अफ्रीका खासकर उपनिवेशित थे तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चले। ये जो राष्ट्र बनाना चाहते थे वो राजनीतिक स्वाधीनता पे बनाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई संस्कृति के आधार पर देश बनाए। तो उनका कहना था कि हमें न्याय मिले, अधिकार मिले, समृद्धि मिले, ये इनका मानना था। पर हाँ, यहाँ पर भी कुछ ग्रुप थे जो संस्कृति के आधार पर अलग राष्ट्र चाहते थे, पर वो असफल हुए, उनका कोई कार्य नहीं था। फिर भी इन देशों में युद्ध हुए, हिंसा हुई थी, कुछ न कुछ कारण हमेशा रहा। और ये जो राष्ट्र राज्य बने उनमें एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हुई, ये कि पहले तो जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने संघर्ष किया, उनको स्वाधीनता मिली, उन्होंने अपना देश बनाया कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। पर जो लोग आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते थे वही अल्पसंख्यकों का दमन करने लगे। मतलब उन्होंने अपने अधिकारों की तो सुरक्षा की, परंतु जब अल्पसंख्यक समूह ने अपने अधिकार माने और मांगे तो उनका विरोध किया जाने लगा। अब हम इस पेज का आखिरी पैरा पढ़ेंगे और ये पेज को हम आगे ले जाएंगे। हम 102 का आखिरी पैरा से 103 पर पहुंचेंगे। मैं पैरा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राजसत्ताएं दुविधा में फंसी हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं बल्कि वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान यह सुनिश्चित करने से है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्ली पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह अस्तित्व पूर्ण रह सके। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए भी जरूरी होगा। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ से इस पैरा से हमें ये समझ में आ रहा है कि अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप कोई भी देश देखिए, भारत देखिए, अमेरिका देखिए, कहीं भी देखिए, ये जो आत्मनिर्णय का मुद्दा बीच बीच में उठता ही रहता है। आप कितना भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे कहीं ना कहीं से मुद्दे उठते रहते हैं। भारत में भी आपने देखा होगा कि 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। असम में भी इस तरीके के मूवमेंट हुए हैं, और भारत में नहीं, विश्व में बहुत ज्यादा इस तरीके के आंदोलन है जहाँ लोग अलग होना चाहते हैं, आत्मनिर्णय करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बताइए कितनी बार आप इसका समाधान करेंगे कि नहीं, आप अलग होके अपना राज्य बना लीजिए, अलग हो जाइए और आत्मनिर्णय कीजिए, फिर एक ग्रुप आ जाएगा नया, कहेगा नहीं अब हमें आत्मनिर्णय करना है। तो इस तरीके से नहीं चल सकता है। जरूरी क्या है कि हम राज्यों का गठन ना करें, बल्कि जो राज्य हैं उसको लोकतांत्रिक बनाए, समतामूलक बनाए, मतलब वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करें, उनकी संस्कृति की, उनकी नस्ली पहचान की रक्षा करें, और सभी एक ही समाज में रहकर सह अस्तित्व पूर्वक रहे। मतलब मैं, मेरा भी अस्तित्व रहे, आपका भी अस्तित्व रहे, और जो भी हमारी भी समस्याएं आ रही है उनको हम मजबूती से लड़ें। हम राष्ट्र राज ऐसा बनाए जहाँ पे अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को पहचान मिले, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। और देखिए, जो देश अपने अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा नहीं करता, उनको पहचान नहीं देता, उस देश को कोई कद्र होनी भी नहीं चाहिए, उस देश की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो जरूरी है कि आप अपने समूह के, अपने देश के अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा करें, और देखिएगा तब आपके वो जो सदस्य हैं वो भी बहुत निष्ठापूर्वक राष्ट्र के लिए काम करेंगे। अब हम सब टॉपिक 7.4 पर हैं, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। मैं पहला पैरा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान। तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए, हमने इतना जो ऊपर पैरा पढ़े तो उन सब से हमें ये समझ में तो आ गया कि एक संस्कृति वाला फॉर्मूला फेल हो गया। ये विचार ठीक नहीं है कि हम संस्कृति के आधार पर देश बनाए। तो देश किस आधार पर बने? देखिए, कोई भी देश जहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों को वैल्यू मिलती है, उसमें भले कितनी भी संस्कृतियां हो, कितने भी समुदाय हो, वो देश सफल होगा जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को आदर मिले और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो। और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा भारतीय संविधान है। आपने मौलिक अधिकार में देखा होगा कि जितने भी धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, उनको मौलिक अधिकारों में उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। तो संस्कृति छोड़कर हम बल्कि मौलिक अधिकारों के द्वारा लोगों की रक्षा करें, यह बहुत जरूरी है। अब मैं अगला पैरा पढ़ रही हूँ। विभिन्न देशों में समूह को जो अधिकार प्रदान किए गए उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूह और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक रक्षा के अधिकार। कुछ मामलों में समूह को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों के आधार पर नियुक्ति ठहराया जा सकता है कि यह अधिकार इन समूह के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा इन समूह को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा, जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्वता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सके। तो हमने इस पैराग्राफ से अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके कुछ विचारों को, उनके कुछ अधिकारों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी, खासकर उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, धर्म है, उनको संवैधानिक दर्जा मिले। और दूसरा ये कि ये जो समुदाय हैं उनको कुछ जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या विधायी संस्थाएं, उनमें भी इनका प्रतिनिधित्व हो, ताकि वो अपने विचारों की, अधिकारों की रक्षा कर सके। तो तभी उन्हें भी लगेगा कि हम उनके संग समान व्यवहार कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरूरी है कि ये जो समुदाय है उनको हम अपने राष्ट्र का एक अंग माने और राष्ट्रीय पहचान की समावेशी रीति को माने। समावेशी रीति मतलब एक ऐसा राष्ट्र बनाए जिसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी धर्म का हो, संस्कृति का हो, सभी का समावेश हो, सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे सदस्यों को महत्व देते हैं, एक दूसरे का आदर करें और सभी मिलकर राष्ट्र के लिए योगदान दें। अब मैं अगला पैरा शुरू कर रही हूँ। हालांकि उम्मीद की जाती है कि समूह को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी, फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह प्रत्येक राज्य की मांग पर अडिग रहे। यह विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहां राष्ट्र की आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदाय को उद्वेलित कर रही हैं। ऐसी मांगों से अलोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता एवं दक्षता का परिचय दे। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जरूरी है कि हम समूह को मान्यता दें, फिर भी कुछ लोग अलग मांग कर सकते हैं। और ये एक थोड़ा सा अजीब बात है, क्योंकि अब हम देश के नागरिक की बात नहीं आते, हम वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक है, वो मंडलीकरण चल रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन है। फिर भी कभी ना कभी ऐसी आकांक्षाएं आ जाती हैं जहां पर कुछ समुदाय अलग होना चाहते हैं, आत्मनिर्णय करना चाहते हैं। तो इस समय जरूरी है कि इनसे लोकतांत्रिक ढंग से निपटें। लोकतांत्रिक ढंग से निपटने का अर्थ है कि हम लोगों को उदारता से उनके संग काम करें, दक्षता का परिचय दें, हिंसा ना फैलाएं। वो लोग क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, थोड़ा सा हम उनको जो अधिकार है उसकी कटौती ना करके उनके अधिकारों को थोड़ा सा बढ़ावा दें। तो लोकतांत्रिक ढंग से अगर हम चाहें तो हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब मैं अगला पैरा पढ़ रही हूँ, 103 पेज पर है। आखिरी पैरा पढ़ते हुए मैं पेज नंबर 104 पर आऊंगी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन ये नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। साथ ही यह संभवतः अवांछनीय भी होगा। यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बहुत छोटे हों और इसमें अल्पसंख्यक समूह की समस्याएं और बड़े। इस अधिकार की अब यह पुनर्व्याख्या की जाती है। इसका मतलब यह है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति। देखिए, अब ये पैरा हमें समझा रहा है कि ठीक है, अब ये जो हम आत्मनिर्णय की बात करते हैं वो राष्ट्रीयता से तो जुड़ी है, लेकिन जरूरी, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है कि आप हर बार राष्ट्र, एक नया राष्ट्र बनाते जाए किसी के लिए। आप इट इज अ फूलिशनेस वी कैन से कि आप कहें कि एक राज्य आया, एक समूह आया कि अब हमें नहीं रहना है, हमारे को आत्मनिर्णय करना, हमें अलग होना। आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र बनाने लगे तो आर्थिक रूप से फेल होंगे, राजनीतिक दृष्टि से भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां का जो समूह होगा, मुख्य समूह, वो अपने अधिकारों की रक्षा करेगा और अल्पसंख्यक समूह की समस्या फिर बढ़ेगी। तो अब हमने ये जो आत्मनिर्णय है उसकी डेफिनेशन को ही हमने चेंज कर दिया है, हमने राष्ट्रीयता की डेफिनेशन को ही चेंज किया है, जिसमें अब हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीयता क्या है, जहां पर कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों को स्वीकृति देकर हम आत्मनिर्णय का अधिकार दें। मतलब जैसे अगर एक समूह है को अलग, वो कोई निर्णय चाहता है, आत्मनिर्णय का चाहता है, तो हम के उसके अधिकारों को हम थोड़ा सा बढ़ावा दें। ये नहीं कि हम उसे कहें कि आप पृथक हो जाइए, या वो कहें हमें पृथक होना है। पृथक नहीं होना है, राज्य के भीतर ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों को हम स्वीकृति दें, यही आज की राष्ट्रीयता है। मैं इस चैप्टर का आखिरी पैरा पढ़ रही हूँ। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उन दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एक जाति स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें। तो ये आखिरी पैराग्राफ में पूरा निचोड़ है कि जरूरी है कि हम समूह को पहचान दें, मान्यता दें, उनको अधिकार दें, और संघर्ष करते हैं लोग, अल्पसंख्यक समूह संघर्ष करते हैं, और हम उनको, उनके संघर्षों की हमें इज्जत भी करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रीय पहचान को मान्यता दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवाद में हम असहिष्णु हो जाएं। हम एक जाति स्वरूपों को वैल्यू देने लगे, ये नहीं होना चाहिए कि एक जाति को ही हम अधिकार देने लगे। हमको सभी को साथ लेकर चलना है, सभी के अधिकारों की रक्षा करना है, वही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद एक राष्ट्र जहां पे अधिकारों को सब समानता से यूज कर सके और सभी के संग समान बर्ताव हो, और हाँ, जो अल्पसंख्यक ग्रुप है उसको आप थोड़े से अलग अधिकार दे सकते हैं, उन्हें कुछ संवैधानिक दर्जा देकर आप राष्ट्रवाद को बरकरार कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर का समरी था जिसे हमने अभी समझा। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर को हम विराम देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने सबसे पहले बात की थी, शुरुआत की थी कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए कुछ राजनीतिक मूल्यों की जरूरत है, तो राजनीतिक मूल्य में हमने साझे विश्वास को समझा, इतिहास, भू क्षेत्र, और आज हमने जाना कि राजनीतिक आदर्श और साथ में राजनीतिक पहचान की बहुत जरूरत है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। हमने ये भी जाना कि यूरोप में एक राज्य एक संस्कृति की भावना उद्वेलित हुई थी, परंतु वो काम नहीं की, वो फेल है वो सिस्टम, क्योंकि आप किसी संस्कृति के आधार पर देश नहीं बना सकते। हर राष्ट्र आत्मनिर्णय चाहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मनिर्णय चाहते हैं, और इस आत्मनिर्णय के लिए बहुत सारे संघर्ष आज भी जारी है। आत्मनिर्णय का अर्थ है कि हम स्वतंत्र अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो ये आज भी मुद्दा बरकरार है। लेकिन आप बार बार राज्यों का गठन नहीं कर सकते, तो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप समाज को, अपने राज्य को और लोकतांत्रिक और समतामूलक बना सकते हैं, जहां पर आप सभी के संग सह अस्तित्व पूर्वक रहे, मतलब सभी को, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके विचारों की भी आप रक्षा करें। तो ये हमें समझ में आया कि एक संस्कृति और एक राज्य का विचार हमें त्यागना पड़ेगा। हमें ऐसे देश की स्थापना करनी पड़ेगी जहां पर विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न समुदाय एक साथ फल फूल सके, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश भारत है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि आत्मनिर्णय के लिए जरूरी है कि हम देश के अंतर्गत ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों को स्वीकृति देकर सबको सम्मान दें और सबको आदर दें और अपनी राष्ट्रीय पहचान को बरकरार रखें। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और फिर आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलूंगी। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।